राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 अक्टूबर 1993 को साय लगभग 3 बजे भीनाशर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आप लोग कोई पूछो इस विषय में क्या करें?
पर्यावरण पर प्रकृति के बारे में, पर्यावरण पर प्रकृति के बारे में
आपने अध्याय के जो 5वां श्लोक है, आप कह रहे हैं 7वां अध्याय का जो 5वां श्लोक ना परा और अपना प्रकृति, उसकी बात आप पूछ रहे
हैं। भगवान की शक्ति है अपरा और परा दो। अपरा है वो जड़ है, परा वो चेतन है, दो परमात्मा की शक्तियां है। तो ये आरंभ किया है भगवान ने 4वें 5वें में, तो पहले श्लोक में ये कहा कि मैया शक्तिमना पार्थ योगम युंजन मराश्रय असंशयम समग्र माम यथा ध्यास से कर सुनो। मैया शक्तिमना, मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया, जैसे धन में आसक्त होता है, भोगों में आसक्त होता है, उसमें लग जाता है मन, ऐसे जिसका मन मेरे में लग गया है और वो योगम योजन और परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करता है और आश्रय मेरा ही रखता है, आधार आश्रय मेरा रखता है, तो वो मेरे समग्र रूप को संदेह रहित जान जाता है। जिस प्रकार से वो संदेह रहित मेरे को समग्र रूप से जाने, उस प्रकार को मैं कहता हूं तो सुन। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की। अब मेरा आशय लेकर समग्र रूप को परमात्मा जाने, समग्र रूप की बात भगवान ने यहां 7वें अध्याय में कही है। पहले है समग्र पद आया है 23वें श्लोक 4वें अध्याय में, यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के लिए कर्म आचरण किए जाए तो उसके समग्र कर्म लीन हो जाते हैं। तो कर्मों के विषय में तो समग्र आया, भगवान के विषय में समग्र पद अभी तक नहीं आया। तो समग्र भगवान की उपासना ये गीता की विशेष उपासना है। इस वास्ते ज्ञानम त्रयम् सर्वज्ञानम् विज्ञान सुत ज्ञान त्रयम् कहूंगा, अशेष तरह पूरा बाकी नहीं छोड़ूंगा। तो इस ज्ञान के करने से क्या होगा, तू ठीक समग्र जान लेगा। यज्ञात्वा ने भूयो जिस ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानने के बाद जानने लायक वस्तु कुछ भी बाकी नहीं रहेगी, मन वो सर्वज्ञ हो जाएगा। तो सर्वज्ञ कौन होता है, तो भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है, यो मामे मसमूलो जानाति पुरुषोत्तम, मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, सब सर्वित सर्वित को सर्वज्ञ सर्वित है। फिर उन्हें पहचान सर्वभाविन मां भजती, सब भाव से मेरा ही भजन करता है, ये उसकी पहचान है। ऐसे समझ रूप को मैं कहता हूँ तो भगवान ने कहा अशेषतः पूरा पूरा कह रहे हुआ, और यहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं उसको जानने के बाद अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्टते, अन्य कोई जानने लायक बात रहेगी नहीं। मतलब प्रथम नान्यत लगाई बता, अन्य तो कोई है ही नहीं, अन्य तो कोई वस्तु हो तो बाकी रहे। जब समग्र रूप है मेरा उसको जान लेने का आदान देता है तो जानना कुछ बाकी रहता ही नहीं। मतलब परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, मेरे सवाल उसे आगारी कारण कोई रूप है ही नहीं, तो मेरे को ठीक जानने के बाद बाकी कैसे रहेगा, कोई है नहीं, तो सब कुछ मैं ही हूँ। ये बात कहने के भगवान ने प्रतिज्ञा की, मान उपक्रम किया। इसके बाद भक्तों का चार भक्तों का वर्णन किया है 16, 17, 18, 19। उसमें कहा कि वासुदेव सर्वमिति महात्मा सु दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है, परमात्मा ही है। इति माम इति ज्ञानवान माम प्रभु, ऐसा ज्ञान वाला मेरे शरण होता है तो ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा से कुछ है ही नहीं, तो अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्य रहे। मतलब नान्य किंचित धनंजय वासुदेव सर्वमिति महात्मा सु दुर्लभ। तो ये सातवें अध्याय की बात बताई। तो ये दोस्तों को हम कहकर, और भगवान ने कहा कि मैं कहूंगा समग्र रूप से मैं वर्णन करूंगा, तो आप वर्णन क्यों करें महाराज, आपके भगत कह दे कोई संत वर्णन कर दे। तो भगवान कहते हैं भाई संत मिलना कठिन है, और वो वर्णन करेगा तो अपने धारणा से करेगा। जितने संत महात्मा हुए, कोई द्वैत कहता कोई अद्वैत कहता, कोई विशिष्ट अद्वैत कहता कोई शुद्ध अद्वैत कहता, वसिद्ध भेदाभेद, ऐसे वैष्णव संप्रदाय में ऐसे कई मत भेद है। और मैं समग्र रूप से कहता हूँ, ऐसे समग्र रूप से वर्णन करना और कोई आचार्य में याद नहीं, आपको लोगों को याद हो तो भाई बता दो, फिर कहने लग जाऊंगा स्मरण नहीं है। आप बताओगे भगवान के समग्र रूप का, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत भेदाभेद, ऐसे आचार्यों ने वर्णन किया है। पूज्य चरण आचार्यों ने मात्र दुनिया के हित के लिए बातें कही है, उनमें कोई वक्ता बनने के लिए, प्रसिद्ध बनने के लिए, गुरु बनने के लिए नहीं, दुनिया का हित हो जाए जैसा समझ में आया उस तरह से वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, मनुष्यों का जो हजारों है ना, मनुष्यों के हजारों, उन हजारों में कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, हजारों में कोई एक, तो 999 तो साधु करते ही नहीं, भगवान को जानते ही नहीं। उन मनुष्याणाम सहस्र से बहुत सब दिया है, तो 1000 में नहीं कई हजारों में, 5-10 हजार में कोई एक साधन करता है सिद्धि के लिए, कश्चित् यतति सिद्धे। और यतताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले जो सिद्ध हो गए हैं, उन सिद्धों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, सब सिद्ध पुरुष मेरे को तत्व से नहीं जानते। जैसे यत्न कोई एक ही करता है, उस यत्न करने वालों में कहो में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है, तो दूसरा कैसे कहेगा, पूरा जानता ही नहीं, इस बार से मैं कहूंगा, ये भगवान विशेषता से कहते हैं। तो इस बात के कहने से है, लोग ये समझते हैं कि भगवान का वर्णन, भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, कठिनता का वर्णन नहीं है इसमें, इसमें सामान्य अवस्था का वर्णन है, जो अभी संसार की स्थिति है उसमें ये अवस्था है, कठिनता का सुगमता का नहीं। कहने वाला दुर्लभ है, ठीक तरह से बताने वाला क्या बताएगा जो पूरा जानता नहीं तो क्या बताएगा। उस बताने वाले समग्र रूप को बताने वाले कम है, ऐसे बहुत कम होते, ये तरह का तात्पर्य है। कठिन नहीं है, लगते ही नहीं इसमें, परमात्मा में सच्चे हृदय से लगते ही नहीं, मूल बात ये है। और लग जाते हैं तो थोड़ी उन्नति में अपने को कृतिकृति मानने लगते हैं, ठीक मानने लगते हैं, तो कैसे उस परमात्मा को जाने। ये तीन श्लोक तो ऐसे आ गए। अब कहते हैं भगवान अगार कि भूमि रापो जलो वायु खम बनो बुद्धि अहंकार बिना प्रगति रष्टा। अब यहां से शुरू करते हैं, जो प्रकरण कहने के लिए कहा वो शुरू करते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहम, ये आठ प्रकार के वेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा मानो जग निकृष्ट, अपरा यम, यम प्रकृति अष्टधा अपरा, इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में परा, इससे अन्य एक परा प्रकृति है मेरी। वो परा प्रकृति का है कि जीव भूता महाबाहो ये दमधारी, वो जीव रूपी एक मेरी प्रकृति है। तो अपरा परा वह एक मेरी प्रकृति, एक भगवान रहे। और ये जितने प्राणी मात्र दिखते हैं एतद योनिनी एतद मन एते, ये दोनों परा प्रत्यय अपरा, ये है कारण जिनका, एते कारण एतद योनिनी भूतानि, जितने प्राणी हैं मनुष्य पशु पक्षी देवता गंधर्व कारण आदि देवता है, पशु पक्षी है, चौरासी लाख कोटि के जीव है, जलचर है, थलचर है, नवचर है, सब इन दो प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। अपराध पर मानो संसार में जो शरीर जितने हैं तो ये पांच भौतिक है, और भीतर में मन बुद्धि अहंकार है, ये अपरा प्रकृति है। और एक जीव है जो ममई वानस हो जीव रूपे जीव, मेरा ही साक्षात अंश है। तो मेरा साक्षात अंश है वो परा प्रकृति है, और ये अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति है उसके आठ भेद बताए, तो एक एक से सूक्ष्म है। पृथ्वी है भूमि आप, उसे जल है, जल सूक्ष्म है। अनल सूक्ष्म है, और अग्नि है, और इससे आगामी वायु है, और आकाश, ये पांच भूत है। तो पांच भूतों में सूक्ष्म पांचवा हुआ आकाश, ये सूक्ष्म है। दस गुना अधिक है, व्यापक है, ये ऐसा वेदांत ग्रंथों में आता है। तो ये व्यापक है, एक अभी सूक्ष्म है। इसके बाद मन बुद्धि अहम, ये तीन है, ये तीर समष्टि अंतःकरण है। जैसे हमारा ये शरीर है, पृथ्वी तेज वायु आकाश है बना हुआ, इसमें मन है, बुद्धि है, अहम मैं हूं ऐसा, ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रकृति है। इसमें एक बात ऐसी मालूम होती है कि ये आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति है, जो हम अहम अहम करते हैं, मैं पढ़ा करते हैं, ये मैं पढ़ा भी आठ प्रकृतियों के ही अंतर्गत हुआ। भूमि से लेकर अहंकार इति ये अमूल निर्देश है। तो अहम अहम है, ये भी अपरा प्रकृति है, जड़ है, ये बात समझ ली है तुमने। अहम है ये तो मैं सबसे आगाड़ी रहता हूँ, मैं हूँ, ये तो मालिक बना हुआ है आप। तो अहम है ये तो है जड़, परंतु परमात्मा का आयुष है वो है चेतन। तो जड़ प्रकृति का अंश तो हुआ अहम, और परमात्मा का अंश हुआ जीवात्मा। ये दोनों मिले हैं, वो सब ये मिले ब्रह्म है। तो अपरा प्रकृति जड़ जड़ विभाग का नाम है, और परा प्रकृति चेतन विभाग का नाम है। चेतन विभाग है वो मेरा अंश है, और ये जो प्रकृति का अंश, प्रकृति पुरुष दो है, एक प्रकृति एक पुरुष है, ये अहंकार तक प्रकृति है। तो अहंकार से आपका स्वरूप अलग है चेतन। इस बात ये एकदम धार्यते थे गया एकदम जगत धार्यते, ये परा प्रकृति है या मानो परा प्रकृतिया पर्या प्रकृतिया परा प्रकृति के द्वारा इतन जगत धार्यते, जगत धारण किया जाता है। तो जगत है क्या है कि इस जीव ने इसको जगत माना है, जगत जीव ने धारण किया है, ये परमात्मा ने नहीं किया है, जीव का धारण किया हुआ है। परमात्मा कहते मेरी प्रकृति है, अपराध अपराध दोनों मेरी प्रकृति है। इस वास्ते भगवान मत परतरम नान्यत किंच दशरथ बताया कि एक योनि भूतान सर्वानि और अहं कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, उत्पन्न करने वाला हूँ और प्रलय रूप भी मैं हूँ। तो उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण हुआ और प्रलय करने से उपादान कारण हुआ। मानो संसार की मिट्टी भी मैं ही हूँ और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। कुंभार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता है तो मिट्टी अलग होती है और कुंभार अलग होता है। तो ये अपरा प्रकृति को मिट्टी की तरह है, चेतन प्रकृति है, चेतन ये है कुंभार की तरह, परंतु उसका भी बनाने वाला अहं कृष्ण जगत, ये जगत को धारण तो ये करता है, ये धारण करना ही जीव का काम है। जगत है ना, जगत जगत किसका नाम है कि जीव ने मान रखा है मेरा तेरा, ये जगत धारण किया जीव ने। भगवान की दृष्टि से तो वासुदेव सर्वम है, और जो महात्मा इस तत्व को जान लेता है उसकी दृष्टि में सब वासुदेव ही रह जाते हैं, जगत रहता ही नहीं। वासुदेव सर्वम ऐसा कहने का तात्पर्य कि सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। तो वास्तव परमात्मा ही है और कोई चीज है ही नहीं, तो उस परमात्मा की ये अप्रकृति है, प्रकृति दो है तो ये परमात्मा से भिन्न अलग नहीं है। जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ तो सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव, वहाँ तो सत्व रज तम गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ व्यक्ति मेरे से उत्पन्न होते हैं। सात्विका भावा राजशास्त्र शास्त्र ये मत मेरे से ही पैदा होते हैं, तो भगवान से ही पैदा होते हैं तीनों गुण। तो अहम कृष्ण जगत प्रभर प्रलय और मत परतरम नान्य, मेरे अगर कोई नहीं है तो कारण बताया। यहाँ कारण रूप से भगवान बता रहे हैं कि सबका मूल कारण मैं हूँ। सज्जनों देखे संसार में लोगों की ऐसी जची हुई बात है, भीतर में बिल्कुल मनुष्यों के बैठी हुई बात है कि रुपया ही सब कुछ है, रुपया होने से सब ठीक होता है, रुपया नहीं होने से आदमी को कोई इज्जत है नहीं, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है, रुपया ही मूल है। ऐसा विचार करके फिर रुपयों के उपार्जन में लग गए, अगर उपार्जन में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी चोरी विश्वासघात कुछ करना बाकी नहीं रखने को, रुपया पैदा हो जाए क्योंकि मन में जच गई ये सबसे बढ़िया है। भगवान कहते हैं सबसे बढ़िया तो मैं हूँ, माता पात्र मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। माता पात्र नान्यत किंचित किंचित नान्यत न है, तो पहले कहा कि मेरे को जानने के बाद में अन्य कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, तो अन्य रहेगा क्या भगवान ही, अन्य है ही नहीं, अन्य क्या रहेगा भगवान ही है। तो मत्ता पर धर्म नानी ये मत्ता सुन लिया, ये अगाड़ी ये तेवर सात्य का बाबा राजघास काम से मत्ता है, उस मत्ता तक मत्ता का प्रकरण है, ये सब मेरे संस्पन्न होते। तो 17 बताइए पदार्थ बताए हैं तो वो सब मेरे से पैदा होते हैं, तो भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में स्थिर रहते हैं, भगवान ही संहार करते हैं, भगवान के सिवाय उसमें कुछ तत्व है नहीं। जैसे घड़े में मिट्टी के सिवाय क्या निकलेगा और कुछ नहीं, ऐसे मेरे सिवाय कुछ नहीं बचेगा, मैं हूं। तो तो ये ज्ञान बताते हैं विज्ञान से ज्ञान, मानो विवेचन के द्वारा विचार किया जाए ये ज्ञान है, और विवेचन को लेकर धारण कर लेगा ठीक दर्शन होगी विज्ञान हो जाएगा। वो अशिष्ट है, मैं कहूंगा पूरा का पूरा कहूंगा। तो पूरा कहने के लिए अपरार प्रकृति दो बात बताई, क्या धातु है ये बात बताई। ये वहां 13वें अध्याय में प्रकृति पुरुषम से विद्यन आदि उभाव विभाव भी दो बताया। 23वें श्लोक में ये उवेति पुरुषम प्रकृति से गुण बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ बताया, इधर से ये क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ बताया, और एक अपने को बताया। ये 15वें में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम बताया, अक्षर है अपरा प्रकृति, अक्षर है परा प्रकृति और अहम भगवान। तो ये तीन बातों पर एक भगवान है या दो भगवान की प्रकृति है, प्रकृति होती है। प्रकृति क्या है कि जैसे आपकी प्रकृति आपका स्वभाव है, तो स्वभाव आपका है, इस स्वभाव को कोई अलग बता सकता है? मनुष्य को छोड़कर मनुष्य के स्वभाव को अलग बता दे, ये इसका स्वभाव रहा, नहीं बता सकते। जैसे अग्नि में एक दाहिका शक्ति है एक प्रकाशिका शक्ति है, अग्नि एक तो जलाती है और एक अंधकार दूर करके प्रकाश करती है। ये शक्ति अग्नि की है, अग्नि में से प्रकाशिका शक्ति निकाल दे और दाहिका शक्ति भी निकाल दे तो क्या रहेगा? तो ये अग्नि के रूप में होती है, इसको कई तरह माना है, इसमें बड़े मतभेद है दार्शनिकों के। वेदांत इसको अनिर्वचन नहीं कहता है, अद्वैत सिद्धांत, इसे निर्वचन नहीं कर सकते शक्ति का। जैसे मनुष्य में ताकत है, ताकत भक्ति है, उसकी शक्ति है। अब ताकत को भी अलग करके बताओ तो अलग बता सकते हो? अरे नहीं बता सकते। और आपका स्वरूप ही नहीं है, आप तो रहते हो, शक्ति घटती बढ़ती है, कभी ताकत रहती है कभी ताकत वो नहीं रहती। मैं तो आप देखता हूँ, पहले जाने करना वहां गए वहां गए वहां गए, उस भाई लेता ही नहीं था पैदल चले मोटर चले, आजकल मुश्किल हो रहा चलना। मैं तो वही हूँ पर शक्ति वो नहीं है। तो शक्ति घटती बढ़ती है, शक्ति में विकार आता है, अपने में क्या विकार, हम तो वही है पर शक्ति वो नहीं है। ऐसे जानने की कई बात हो जाए, पढ़ रहे तो उसमें कई तरह की शक्ति प्रकट हो जाए, और वे गति बढ़ती रहती है। तो प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, ऐसे भगवान की ये प्रकृति है दोनों। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव रूप मेरा अंश है। तो प्रकृति परमात्मा अंश है, वो चेतन अंश है, और अहम है ये प्रकृति का अंश है। मैं हूं, और जानने गहरी बात है, गहरी बड़ी बड़ी सुगम बात है, सीधी है। मैं हूं किसका अनुभव नहीं है बताओ? कोई बालक हो चाहे बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपन हो, भाई हो चाहे बहन हो, सबके भीतर है कि मैं हूं। इसमें किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? कोई बालक पुस्तक में लिखा है, अमुक महात्मा ने कहा है, इसमें जरूरत है? मैं उसी की बात है, इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप का अनुभव मैं हूं। अब मैं हूं ये जो मिला हुआ है, इसी को ही वेदांत में जड़ चेतन कहा है। रामायण में जड़ चेतन ही ग्रंथ ही पड़ गई, ये गांठ हो गई, मैं और हूं मिल गया। मैं तो हुआ जड़, हूं हुआ चेतन, ये दोनों ऐसे घुल मिल गए अलग पसीद ही नहीं होता। जैसे तपा हुआ लोहा होता है लाल सुर्ख हो जाता है, तो उस लोहे से जल जाता है, घास हो तो आग लग जाए, हाथ लगो तो जल जाए एकदम, तो हाथ जल गया, घास से जल गया, लोहे से जल गया, सब तवे से जल गया, चिमटे से जल गया, तवे से हाथ जल जाए, हाथ तो जलता है अग्नि से, पर जो लोहा अग्नि रूप हुआ हुआ है इसको तादात में कहते हैं, उसमें घुल मिल वो ही ऊपर गया। ऐसे मैं हूँ ऐसा घुलमिल बन गया, और घुलमिल बन करके क्या हुआ कि जड़ शरीर को ही मुख्य मानने लग गया। अरे मुख्य तो तुम हो, चेतन वो हो, ये हूँ है सत्ता, ये है मुख्य, परंतु शरीर ये मैं बैठा, मैं ऐसा करता हूँ, ये इसको मुख्य मान लिया। जब कोई मुख्य मान लिया तो इन दोनों का विश्लेषण होना कठिन मालूम देता है। वेदांत की पढ़ाई करते हैं, सब बोझ करते हैं, पर इसका अलग अलग विश्लेषण कर देना, अलग अलग कैसे करें, मैं हूं तो साथ ही रहता है। तुझे अलग करने की एक बात बताओ, सबके अनुभव की बात बताओ, जागृत और स्वप्न में है मैं हूं ऐसा अनुभव होता है, मैं वो करता हूँ, वैसे गया हूँ, वैसे मिला हूँ, बातें करता हूँ, स्वप्न में भी ऐसी बातें होती है, जागृत में ऐसी होती है, परंतु गाढ़ नींद आती है ना, तो वहाँ ये तीन जो मन बुद्धि अहंकार का, इसके साथ ये तो अंतर करना है, बहिकरण पर ज्ञान इंद्रिया पान कर्मेंद्रिया ये और प्राण, ये सब है जिसमें प्राण तो चलता रहता है परंतु इंद्रिया काम नहीं करती, चक्षुवादी इंद्रिया और मन बुद्धि ये काम नहीं करती, वहां पर काम नहीं करते, गाढ़ नींद में सोता रहता है तो कुछ भी पता नहीं रहता है। पता लगने के जो औजार, इसको करण कहते, करण मानो शब्द सुनना हो तो कान की जरूरत है, रूप देखना हो तो आंख की जरूरत है, ऐसे छूना हो तो त्वचा की जरूरत है, सूंघना हो तो नाक की जरूरत है, चखना हो तो जीभ की जरूरत है, इनके बिना ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनुभव में नहीं ले सकते। तो इनको जो अनुभव में लेने वाला है ये कर्ण होता है, इसको कर्ण कहते हैं। एक भाई ने पूछा कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, तो मैंने कहा कर्ण क्या है पहले तो समझो आप, कर्ण निरपेक्ष कर्म सापेक्ष तो पीछे समझा जाएगा, पहले कर्ण किसको कहते हैं, तो इनको कर्ण कहते हैं। जैसे कागज लिखते हो तो कलम से लिखते हो, तो कलम कारण है उसमें, तो कर्ण बनता है साधन जिसके द्वारा काम होता है। ऐसे आप कोई काम कर तो हाथों से करते हो, किसी को आंखों से भी करते, ऐसे बुला लिया जाइए हो तो आप हाथ से भी, तो ये कर्ण है। मन बुद्धि मनन करते हो तो मन से करते हो, निश्चय करते हो तो बुद्धि से करते हो, और कहीं विचार करते अभिमान तो अहम से करते हो, तो ये सब कर्ण है। ये कर्ण सबके सब कर्ण प्रकृति के कार्य है, प्रकृति से अतीत नहीं है, प्रकृति के अंतर्गत है, प्रकृति से पैदा होते हैं, प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो गाढ़ नींद में है ये अहम रूपी प्रकृति है, ये लीन हो जाती है, और अहम में मन बुद्धि, मन और बुद्धि भी लीन हो जाती है, अहम से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये सब के सब ही अहम में लीन हो जाता है, अहम अविद्या में अज्ञान में लीन हो जाता है। नींद कहते नींद आ गई, गहरी नींद आ गई, तो गहरी नींद में अहम नहीं रहता है, ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना नेत्र चक्षु आदि इंद्रियां रहती है, तो सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, और आप रहते हो तो क्या पता हम भी नहीं रहते हो ना, आप उठ कर कहते हो तो मैं बड़े सुख से सोया और मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई कुछ भी पता नहीं, सुख जैसा सुख भी आपके अनुभव में था, और कुछ भी पता नहीं ये भी अनुभव था, कुछ पता नहीं, तो जिसका पता लगे पता न लगे दोनों बातों को जानने वाले आप होते हो। पता लगे वहां तो अहंकार होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, इंद्रियां होती है, और जो पता कुछ नहीं लगे तो कर्ण है ही नहीं, आपके बिना कोई देख सकता ही नहीं, ऐसे कर्ण के बिना संसार को दाग देख ही नहीं सकते, कर्ण से तो संसार का अनुभव होता है, इस वजह से ये दम धारित है जगत, परा अपरा प्रगति जगत है, इसने धारण कर रखा है ये अहम, अहम के साथ भूल मिल करके जगत का रखा है। तो जगत का सबका कारण अहम है, उस क्षण में चेतन अलग है। अब चेतन को अलग कर दिया जाए तो जयराम जी दी ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो उस समय गाढ़ी नींद में आप रहते हो, नहीं तो सबके अभाव को कौन कहता है। जैसे कोई बाहर से आवाज दे घर में, अरे घर में कोई है, तो एक आदमी देखा कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए, कोई घर में नहीं है। तो कोई नहीं है ये कहने वाला तो है ना, नहीं तो कोई नहीं है वो कहता, उसका अर्थ है मेरे सिवा कोई नहीं है। अर्थ तो ये होता है भाई, वो कहता है कि कोई नहीं है, तो कोई नहीं कहने वाला है। ऐसे मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो पते के अभाव को जानने वाला था वहां पर, नहीं तो कैसे कहता है। तो उसमें बड़ा सुख होता है कि अहम से रहित होने में सुख बहुत होता है। आप भोगों के लिए तरसते हैं, रुपयों के लिए भोगों पर, रुपयों के लिए, पर तो आपको रुपयों के साथ शांति नहीं मिलती, भोगों के साथ शांति नहीं मिलती, गाढ़ नींद में शांति मिलती है। ये सबका अनुभव है। बड़ी आश्चर्य की बात है, नींद से उठते हो तो आपके शरीर में ताजगी आ जाती है, नेत्र आदि में सुनने समझने में ताजगी आ जाती है, होशियारी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, और काम करते करते थकावट हो जाती है, और नींद लेते थकावट मिल जाती है। तो संसार के संबंध से तो थकावट होती है, संसार के संबंध विच्छेद होने से विश्राम मिलता है। जैसे गोस्वामी में है कि पायो परम विश्राम राम सब नामी कहूं, तो परम विश्राम कैसे कहा होता है, अपने स्वरूप में स्थित हो, सब दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए तो सुख दुख विषम हो जाएगा। ये बाहर में आने वाली चीज है, हम तो इनसे अलग है। तो ये बात बताने के लिए भूमि आपने ये अपरा प्रकृति बताई, जीव परा प्रकृति बताई। तो परा प्रकृति अपरा का संबंध है, इनके दो है, तो इसे कैसे अनुभव हो कि परा जो उत्कृष्ट प्रकृति है ये अपरा के बिना रह सकती है, पर अपरा बिना परा शक्ति के नहीं रह सकती। भूमि आपा धर वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये बिना चित्र के नहीं रह सकती। और चेतन रहता है, नींद में सोता है, तो सब संसार का अभाव हो जाता है। क्यों? संसार का कारण अहम है, अहम लीन हो गया, संसार कह रहे बेचारा। तो संसार के अभाव का अनुभव होता है, उसे ताजगी होती है। यह नींद से ताजगी होती है, अगर जागृत अवस्था से अहम से रहित तो होकर सुख हो जाए, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति। ये बह में रुपयों से भोगों से रूप मिलता है, बिल्कुल गलती की बात। सुख तो अलग हो तो मिलेगा भाई, ना सुख काजी पड़ देता, ना सुख भूख भया, सुख सहता ही आवश्य ये तृष्णा रोग गया। ये पैदा करने की भोग करने की जो इच्छा है ये मिट जाए तो सुख सहता ही आवश्यक। ईश्वर रूप जीव अविनाशी चेतन अमल और है, सहज सुख राशि है, सुख राशि नहीं, सहज स्वाभाविक सहज, ये कोई परिश्रम नहीं है, सुख नहीं परिश्रम है। सुख के लिए परिश्रम करते हैं, इसमें थकावट होती है, थकावट को तृप्ति कहते हैं, भोग कहते हैं। लगभग देखते देख थकावट है, सोए हुए अब इसने बंद कर सोए गए, खाते खाते धाप गए, अरे धाप गया गया खाने की शक्ति बैठ गई, ना ताकत हो गया, अब आप शक्ति मिले। तो संसार के अनुभव करने में, भोगों करने में थकावट होती है, उस थकावट को तृप्ति कहते हैं। खाते खाते खा नहीं सकते तब तृप्ति, तृप्ति कहते थक गए खा नहीं सकते, हार हो जाती है वहां कहते तृप्ति होगी साहब, हार के लिए तृप्ति का तृप्ति होगी तो फिर भूख लगनी नहीं चाहिए। खा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सुनते 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 कहते अब तो भाई नींद आती है, सुनो तृप्त हो गए, तृप्त क्या सुनते सुनते थक गए, ऐसे विषयों को भोगते भोगते थक जाए, थक जाए जो मेरा तृप्ति हो विषय भोग करके तृप्ति, अब थक गए वो लोग उसे तृप्ति नाम हो गया। तो बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज इससे अलग आप हो, ये जो मैंने कहा आप अलग हो, आप चेतन हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आप रहते हो, जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, और स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं है, पर आप किस अवस्था में नहीं है बताओ, अवस्थाओं का अनुभव होता है, अपना अनुभव इस तरह से नहीं होता, संभव की तरह वो होता मैं हूं, हमने सत्ता है, हमारा सत्ता रूप, अगर कुछ भी पता नहीं था तो ये ज्ञान आपको, सत्ता तो होनापन है और ये ज्ञान आप मेरा, अगर सुख से यही आनंद हुआ तो सच्चिदानंद रूप हुआ आपका, सीधी सारी बात, ये रूप है सच्चिदानंद, तो ऐसा आपका स्वरूप है, इसको आप जानो, और जाना आपको जानना, जानना जितना है सब अपना ही जानना है, दूसरा जानना जानना नहीं है, यो माम भगवान को जानता है वो सर्वमित्र, अपने को जानता है वो सर्वज्ञ, भगवान को जानने वाला जितना सर्वज्ञ अपने जानने वाला नहीं है, अपने जानने वाला ज्ञानी हो जाता है, तो ज्ञान मुक्ति हो जाती है, ये वेति पुरुषम और प्रकृति गुण ऐसा सर्वथा वर्तमान हो भी नी जाए थे, प्रकृति पुरुष अलग जान देता है फिर जानना नहीं होता, तो अपने आप को जानना है और भगवान को मानना है, भगवान को पहले जान नहीं सकते, जीवन जाने जीव के जगपति जाने कौन, जीव जीव को भी नहीं जानता जगतपति कैसे जानेगा, तो अपने को जान ले तो फिर ऐसी तृप्ति होती है, ना भोगों की जरूरत रहती है, ना पदार्थों की रुपयों की, ना मान की, ना बढ़ाई की, ना प्रशंसा की, ना प्रसिद्धि की, ये सब भूख मर जाती है, परम विश्राम मिलता है, परम विश्राम मिलते से ताजगी आती है, जैसे विश्राम करना नींद में तो उससे ज्यादा शरीर में ताकत आती है, ऐसे उस परम विश्राम से महान आनंद आता है, वो तृप्ति तो वहां है भाई है। तृष्णा रोग गया चाह गई चिंता मिश्री मनवा भी परवा, जिसके कसम नहीं चाहिए वो सहानुपति सा, बात समझो बात चाहे बात से कुछ चाहिए रहती है, और लिया धनी हो जाए, प्रजा भी हो जाए, पोष भी हो जाए, विजय हो जाए, जीत हो जाए, नाम हो जाए, कई चीजों वो कोई भूख नहीं देते, इसी तरह सहानुपति सहानुपति सा होता, वो बताया ना कई बार बताता हूँ, मैंने सुनी बात है भाई, कश्मीर के राजा जंगल में चले गए तो एक संत बैठे थे, उसे प्रश्न किया आप कौन हो, तो संत ने प्रश्न कहा आप कौन हो, खुद मैं राजा हूँ, आप मैं महाराजा हूँ, महाराजा कैसे हुए, आप महाराजा कैसे हुए, तो आप राजा कैसे हुए बताओ, आप राजा कैसे हुए, कि राजा इस वास्ते हूँ इस देश में से चाहे जी को उसको निकाल दूँ, चाहे जी को इनाम दे दूँ, इस वास्ते राजा हूँ मैं और देश में से निकाल दूँ, अच्छा देश में निकाल दूँ, हाँ तो मच्छरों को निकाल दीजिए, क्या पैदा होती मच्छरों से आपको क्या पैदा है, मच्छरों को देश में निकाल दीजिए, इसको बोलिए और लाख रुपये मेरे को दे दीजिए, देखो आक्रमण थोड़े लगे पत्ता में तो आप राजा दो बात कही, चाहे जो दे दो चाहे जो निकाल दू, दोनों चाल हो गए, तो आप महाराजा कैसे हैं, हमारे को चाय नहीं है निकालो, बताओ कमी बताओ, कुछ चाहना नहीं है, जीने की भी चाहना नहीं है, रहने की चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं है, बताओ तुम्हारा देवा भी नहीं, आप तो राजा भी नहीं टिक सकते, राजा भी सिद्ध नहीं होगा ना, चाहे जो निकाल तो जा नहीं सकते, तो सज्जनों मुस्ती मुक्ति आनंद तो इस बात में है, चाह न छोड़ने से रियासत छोड़ सकते हैं, रुपया इकट्ठा कर देना सब हाथी बात नहीं, राजा बढ़ जाना सब हाथी बात नहीं, मिनिस्टर बढ़ जाना सब हाथी बात नहीं, पर कुछ भी चाहना नहीं करना हाथी बात, बताओ क्या फर्क पड़ता, बताओ चाह न छोड़ने पर कहते चाह न छोड़ने पर रोटी खाने के नहीं खावे, चाह न छोड़ने रोटी खाने के मैं तो मना करता हूँ, चाह ना नहीं करते रोटी नहीं मिलेगी, अच्छा रोटी मिलेगी तो क्या हो जाएगा सर, कि मर जाएंगे क्या क्या हो जाएगा, अच्छा रोटी खाते नहीं मरोगे, मर जाओगे अन्न बिगाड़ कर मरो तो पहले ही मर जाओ, कुछ अन्न बाकी रहेगा अच्छी बात है, काम आ रही मरना तो हर हालत में है, चाहे रोटी खाओ मरो चाहे रोटी मत खा मरो, पानी पीकर मरो चाहे ना पीकर मरो, मरना तो अवश्य है ही, उसमें नया नुकसान क्या हुआ, रोटी न मिले तो नया नुकसान क्या हुआ, पर रोटी नहीं मिले ऐसा नहीं है तो वह सबको देते, दादी जी मेरा रिक्शा की याद आया तो कह देता दादू दुनिया बावड़ी सोच करे है गली रोटी दे श्री राम जी दोपहरों पहली सार नाम कुत्या ही बात आवे तेता जो भगवान जब श्री राम जी थे लाखों वर्ष पहले सार नाम कुत्या को वो कितम था उनका वर्ष ला रहा है क्या रोटी का धर्म है कुछ होगी, कोई दलाली है कोई दुकानदारी है कोई खेती है कोई नौकरी है क्या है, वर्ष चलता है अभी तक लाखों वर्ष और कुछ नहीं मिले तो वंश कैसे चलेगा, तो मर जाएंगे मरोगे नहीं, मर जाओ तो हानि नहीं क्या, नहीं पर नहीं हानि क्या हुई, कई दिन हमने पानी खराब कर पछ मरो तो थोड़ा खराब कम किया होता, मर क्या जाएगा प्राण निकल जाएगा, तो प्राण निकल जाने में क्या है कि हम खाते पीते नहीं हो, मलमूत्र पैदा करते हो फैक्ट्री है एक बढ़िया बढ़िया भोजन चांदी के सोने के वर्ष लगे हुए बढ़िया मशीन खा लो और मेला पैदा कर लो, गंगा जी का जमुना जी का पवित्र जल पी लो और पेशाब फैला दो तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री ये मशीन है ये, अपने सूर्य क्या हो जाएगा विजय फैक्ट्री क्या चीज है साहब, मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ जानते हो मेरे को, ऐसा जानते हैं क्या हो मलमूत्र की फैक्ट्री मशीन मेरे को जानते हो नहीं आप हमारा परिचय ये हमारा परिचय है तो भाई ये अपरा अपरा प्रगति है, अपरा प्रगति में दस अपरा की मुख्यता तो अपरा बदलती है, देखो आपको बात बता रहे हमारे भाई बातें ये याद की हुई है की सुनी हुई है पढ़ी हुई है आ जाती बता देते हो, जब से आपको कुछ याद हुआ होश हुआ तब से लेकर आप तो वही है ना, वही मैं हूँ पाली में था पढ़ता था वही मैं हूँ, शरीर वो है क्या, तो आप तो बदलते नहीं शरीर बदलते हैं, फिर शरीर को मैं होते शरीर कैसा हुए, आप तो बदले ही नहीं है शरीर बदले बिना रहा ही नहीं, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते ही नहीं तो आप शरीर कैसे हुए, शरीर आप कैसे हुए, शरीर को अपना मानता ममता है शरीर को मैं मानता अहंता है, निर्ममो निरंकार है शांति मत कर सती, निर्ममो निरंकार शांति मिल जाए ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्मो निरहंकार होती ब्रह्म स्थिति ब्रह्म की जानती ऐसा ब्रह्म स्थिति और से निर्मो निरहंकार ब्रह्म ज्ञान हो गया, सीधी सादी बात है ये है सब इधर, अब इसमें कर्ण क्या करेगा बताओ, कर्ण तो बेचारा कहीं रह गया, इंद्रियां है कर्ण तो कहीं रह गए, ये कारक जितने हैं क्रिया की सिद्धि में हेतु है, क्रिया क्रिया पदार्थ का पदार्थ और क्रिया दो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति तक भी कर्ण नहीं पहुंचता तो परमात्मा तो कर्ण कैसे पहुंचेगा, तो कर्ण रहित आपका तत्व है वो आपका स्वरूप है, अब इस विषय को समझा है ठीक तरह से तो समझा है तो कोई शंका तो पूछे, बहुत खुलेगा विषय है। समझ करके गहरे उतर कर शंका करो, बोलवा बोल पूछे कल बोल, विषय खुलता है शंका से। बात ये है कि आप कहाँ नहीं समझे मेरे को पता नहीं, शंका करो पता लग जाए या नहीं समझे तो फिर बात कहें तो बहुत विषय खुलता है। तो ये अपरा परा दो प्रकृति आपने पूछी, तो अपरा परा प्रकृति है इसमें परा प्रकृति आपका स्वयं का स्वरूप है, अपरा प्रकृति है जो प्रकृति का ही धारण किया है। सर्वाणी है दो कारण है, अपरा परा प्रकृति से सब प्राणी पैदा होते, सब प्राणियों में दो चीज है, जैसे माँ बाप से हम पैदा होते हैं ऐसे प्रकृति पुरुष संसार मात्र पैदा होता है, यह दोनों का अंश होता है, चेतन अंश परमात्मा का है, चेतन अंश प्रकृति का है, इनको नाम अलग अलग ध्यान है। देखो दही होता है ना उसमें घृत होता है, परंतु दही से अलग निकाल दे तो छाछ हो जाती, फिर घृत मिलता नहीं, दही से निकाल करके घी का टका ऐसे ऐसे किया जाए छाछ छाछ फिर छाछ में डाल दो मिलेगा नहीं। यह हेमती पुरुष और प्रकृति से गुणी स तो प्रकृति छाछ रहा पुरुष को जान लिया, अब भाव मिलते ही नहीं, मैं सांस में एक रोगी को पड़ा जाएगा अलग कर लो एक बार फिर नहीं मिलेगा। यद ज्ञातवा न पुनर्भोम एवं यशी पांडव जी के जानने के बाद फिर ऐसा मोह नहीं होगा, अलग है कि नहीं इस बात का अनुभव करने के लिए हमारे को बात अच्छी मिली कि गाढ़ सुषुप्ति में अहम के बिना आप रहते हो, अहम के बिना आप रहते हो तो आप रहो दो है, आप लीन नहीं होते हो, प्रकृति अहम लीन हो जाता है तो आपका स्वरूप अहम नहीं है, अहम तो प्रकृति का है अपरा है, अपरा प्रकृति का है। तो अहम अहम ये जानने में आता है, संसार सब जानने में इदं शरीरम को होते क्षेत्रम क्षेत्र है, अगर एतद यो वेत्ति तो एतद करके अहम है, इदम और एतद में फर्क है, इदम इदम करके सामान्य एतद नाम बहुत नजीक, तो नजीक अहम है इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, अरे क्षेत्रज्ञ विचार माम पे जो मेरे साथ एक है, मेरे साथ एक तो है और मन है हम के साथ एक अपने में, हम के साथ अपने को मान लिया ये है गलती, इसको अज्ञान कहते हैं, हम से खुल मिल गया इस बार हम है, ये जो सन्निपात का है बड़ा रोग है, सन्निपात सत्वरस्तम तीनों गुण है ना, प्रीत कह रहे थे तीनों भाई उपदेश सन्निपात तो बुलाई, तो ये बात है तो मैं हूं तो मैं नहीं रहते हूं नहीं रहेगा पर है रहेगा, मैं नहीं रहने से हूं नहीं रहेगा पर है रह जाएगा है, तो परमात्मा है ऐसा परमात्मा है वो है वो मेरा है, कोई जो मैं हूं नहीं हूंगा मेरा है मेरा ये नहीं मेरा नहीं है, आप हूं है तो सत्ता रूप है, जो है रूप का साथ आपका संबंध है, मैं के साथ ये कि सत्ता ही नहीं है बदलता है तो आपका ये साथी नहीं है, आप तो नहीं बदलने वाला है ये बदलने वाला, ये मैं हूं गलती करते हुए ये मैं नहीं है वो मैं हूं, जो सब मैं स्वरूप रहता है उसके साथ आप रूप की एकता है, मैं के साथ आपकी एकता नहीं है, आपने मैं के साथ मान दिया तो वो नहीं है, मैं के साथ कैसे रहा गाढ़ नींद में मैं तो नहीं रहता, आप रहे आप नहीं रहते तो सुषुप्ति का आपको ज्ञान क्या होता, सुषुप्ति अवस्था कोई होती है आप जानते हो तो सुषुप्ति जागृत स्वप्न ये अवस्था होती है, आप गिनती हो करते हो तो ये अवस्था आती जाती है, आप आते जाते नहीं हो आप रहते हो, तो रहने वाले आप हो रहने वाले नहीं,